सुबह का वक्त था। हल्की सुनहरी रोशनी खिड़की से अंदर आकर कमरे की दीवारों पर ठहर गई थी। कमरे में एक सादा सा सुकून था, लेकिन उस सुकून के पीछे छुपी थी एक हल्की सी बेचैनी। श्यामली आईने के सामने खड़ी थी। आज उसने डार्क ग्रीन कलर का प्लाजो सूट पहना था, सिंपल लेकिन बेहद खूबसूरत। उसके खुले बाल एक तरफ कंधे पर पड़े थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और आंखों में वही गहराई जो बहुत कुछ कहती थी। वो खुद को देख तो रही थी, लेकिन जैसे खुद से ही नजरें चुरा भी रही थी। सब ठीक है, उसने मन ही मन कहा, सब ठीक होना चाहिए। तभी दरवाजा हल्के से खुला, उसकी माँ अंदर आई, हाथ में नाश्ते की प्लेट थी। श्यामली, उन्होंने प्यार से आवाज दी, तो फिर बिना खाए ही जाने वाली थी ना? श्यामली ने हल्की सी मुस्कान दी। माँ, लेट हो रहा है, सच में टाइम नहीं है। माँ ने सीधे उसकी बात अनसुनी कर दी और प्लेट टेबल पर रख दी। दो मिनट लगेंगे बस, उन्होंने थोड़ा सख्ती से कहा। इतना भी क्या काम है जो अपने आप का ध्यान ही ना रखे? श्यामली कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। माँ उसके सामने आकर खड़ी हो गई, उसे गौर से देखने लगी। एक बात बता, उन्होंने धीमे से पूछा, वहां हवेली में सब ठीक तो है? श्यामली का हाथ एक पल के लिए रुक गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। हाँ माँ, सब ठीक है। माँ की नजरें अभी भी उसी पर टिकी थीं। और दामाद जी? उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, कब लेने आ रहे हैं तुझे वापस? इस बार श्यामली ने हल्की सी नजरें झुका ली, फिर एक बनावटी सी सहजता के साथ बोली, माँ विश्वनाथ जी का बस चले तो वो अभी साथ लेकर चले जाएं। उसकी आवाज में सच्चाई भी थी और एक छुपा हुआ दर्द भी। लेकिन उसने धीरे से आगे कहा, वहां सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ ध्यान से सुन रही थी। और श्यामली ने एक सेकंड के लिए रुककर कहा, वो अक्षरा से शादी के लिए कह रही हैं। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। माँ का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। क्या? श्यामली ने तुरंत बात संभाली, अरे माँ आप गलत समझ रही हो। वो हल्का सा मुस्कुराई, विश्वनाथ जी ने हाँ कहा है, लेकिन बस उनका मन रखने के लिए, उसने जल्दी जल्दी कहा। कुछ दिन में उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर वो खुद ही उनसे बात कर लेंगे। उसकी माँ चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर साफ लिखा था उन्हें ये बात जरा भी सही नहीं लग रही। बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। श्यामली ने उनकी तरफ देखा। रत्ना जी, माँ ने आगे कहा, वो ऐसा क्यों कर रही है? वो तो तुझे कितना पसंद करती थी। उनकी आवाज में उलझन थी। मुझे आज भी याद है, पहली बार जब उन्होंने तुझे देखा था उसी वक्त कह दिया था कि यही मेरी बहू बनेगी। श्यामली की आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें चमकी, वो दिन, वो अपनापन, वो स्नेह। लेकिन अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो गया। उसने हल्की सी सांस ली और मुस्कुरा दी, माँ चीजें बदल जाती हैं। उसकी आवाज अब बहुत शांत थी, और वक्त लगता है सब कुछ पहले जैसा होने में। माँ उसे देखती रह गई, जैसे वो समझ रही हो कि उनकी बेटी कुछ छुपा रही है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, खुश रहना। श्यामली ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर जल्दी से उठी, अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सड़क पर रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन श्यामली का मन आज कहीं और ही था। ऑटो में बैठते ही उसने खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। पेड़, लोग, दुकानें, सब कुछ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके अंदर वक्त जैसे रुक गया था। विश्वनाथ जी, उसके मन में नाम गूंजा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी उतर आई। क्या सच में मुझे लेने आओगे ना? उसने मन ही मन सवाल किया, लेकिन जवाब खामोशी थी। कॉलेज का गेट आज भी वैसे ही खुला था, भीड़ वही थी, शोर वही था, लेकिन आर्यन के अंदर कुछ बदल गया था। वो और विशाल साथ साथ कैंपस के रास्ते पर चल रहे थे, कंधे पर बैग, हाथ में किताबें, लेकिन आर्यन के कदम जैसे भारी थे। विशाल ने एक नजर उसकी तरफ देखा, क्या हुआ, आज फिर चुप चुप है? आर्यन ने हल्की सी सांस ली और नजरें सामने टिकाए हुए बोला, यार आजकल पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। उसकी आवाज धीमी थी, पापा बहुत याद आते हैं। विशाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। आई नो, उसकी आवाज में अपनापन था, तुम मामा जी से बहुत प्यार करते हो। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। लेकिन यार, विशाल ने थोड़ा समझाते हुए कहा, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, वरना मामा जी नाराज होंगे। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो ये बात सुनना चाहता था लेकिन मानना नहीं चाहता था। विशाल ने आगे कहा, अभी भले ही तुम उनके साथ नहीं हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी हर बात का फर्क पड़ता है। आर्यन की चाल धीरे धीरे और धीमी हो गई। आज सुबह ही फोन आया था उनका, विशाल ने कैजुअली कहा, सीधे सीधे तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन घुमा फिराकर तुम्हारे बारे में ही जान रहे थे। ये सुनते ही आर्यन की आंखों में हल्की सी चमक आई और साथ ही एक चुभन भी।
मैं जानता हूँ, उसने धीरे से कहा। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। एक सेकंड रुका और मैं भी नहीं। हवा का हल्का झोंका आया, पेड़ों के पत्ते सरसराए, लेकिन उस पल दोनों के बीच एक खामोशी उतर आई। विशाल ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, चल अब इमोशनल मत हो, वरना क्लास में बैठकर फिर खिड़की के बाहर ही देखता रहेगा। आर्यन ने हल्की सी हंसी दी, तुझे कैसे पता? विशाल ने आंख मारी, भाई हूँ, सब समझता हूँ, सब समझता हूँ। दोनों हल्के से हंस पड़े। तभी कॉलेज की घंटी बजी। ओहो, क्लास का टाइम हो गया, विशाल ने जल्दी से कहा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपने अपने रास्ते मुड़ गए। आर्यन अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके कदमों के साथ साथ उसके ख्याल भी चल रहे थे। क्लास में पहुंचकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। टीचर की आवाज शुरू हो चुकी थी, बोर्ड पर कुछ लिखा जा रहा था, बाकी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे थे, लेकिन आर्यन वो फिर से खो गया था। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा था, उसके पापा का, और दिल में एक ही सवाल, क्या सच में सब ठीक हो जाएगा? उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा, जहां आसमान में शाम का रंग गहरा होता जा रहा था, और उसी पल कहीं दूर एक और कहानी भी आगे बढ़ रही थी, जिसका असर बहुत जल्द उसकी जिंदगी पर पड़ने वाला था।